मंगलवार 31 मई दिनभर के साथ मैं निखिल रंजन। रॉबर्ट वाड्रा के बचाव में आई कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने बीजेपी सरकार पर किया तीखा हमला।
मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री है, शहंशाह नहीं है।
खून चढ़ाने के दौरान 2000 से ज्यादा लोग बन गए एचआईवी के मरीज। बीजेपी प्रमुख अमित शाह इलाहाबाद में रैली से पहले वाराणसी में दलित के घर भोजन करने पहुंचे। सूखे पर खास सीरीज में सुनिएगा किस तरह पानी के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं महाराष्ट्र के बच्चे।
नौ वास्ता पानी आने गल तो पानी काट होता है तो बकेट दिन में पानी भरून तो पानी सांड था पानी सटला।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सुशीला सिंह से। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रायबरेली में एनडीए सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर जश्न मनाने को लेकर सरकार को घेरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शहंशाह कहकर तंज कसा है। साथ ही उन्होंने अपने दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर लगे आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि ये रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ षड्यंत्र है और उसे और कांग्रेस मुक्त भारत की मुहिम के तहत इसे रचा गया है। तुर्की ने रूस पर सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले शहर इदलीब पर हमला करने का आरोप लगाया है। तुर्की का आरोप है कि रूस ने अस्पताल और मस्जिद पर हमला किया जिसमें 60 आम नागरिक मारे गए हैं और करीब 200 लोग घायल हो गए हैं। तुर्की ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस मामले में तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। तुर्की ने इसे मॉस्को और सीरिया सरकार के सहयोगियों की तरफ से असमर्थनीय अपराध बताया। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने इदलीब पर हवाई हमले की बात से इनकार किया है। एक राहतकर्मी ने बताया, रूसी सेना के विमानों ने इदलीब पर कई हवाई हमले किए। अभी ये कहना मुश्किल है कि इस हमले में कितने लोग मारे गए हैं या घायल हुए हैं। हम यहाँ लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। ये थे राहतकर्मी के शब्द। इराक के फलुजा में प्रवेश करने की कोशिश कर रही सेना का कहना है कि उसने इस्लामिक स्टेट के साथ 4 घंटे तक जवाबी कार्रवाई की और उन्हें रोका। इराक में विशेष सेना के अधिकारियों का कहना है कि आईएस ने तड़के सुरंग का इस्तेमाल किया और स्नाइपर और कार बमों के जरिए हमला किया, लेकिन उन्होंने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही उन्हें नष्ट कर दिया। इराकी कमांडर का कहना था कि इस कार्रवाई में 75 जिहादी मारे गए हैं। इस बीच सहायता कर्मियों ने फलुजा में फंसे 50,000 नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। ये क्षेत्र बगदाद से 65 किलोमीटर दूर है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फेसबुक पर हिंदू देवी काली के आपत्तिजनक पोस्ट को शेयर करने और लाइक करने के कारण मुंबई के 2 युवकों के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया है। भोपाल पुलिस ने मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की मदद से 32 साल के अली हसन शेख और 31 साल के अब्दुल कयूम कुरेशी को मुंबई के एंटॉप हिल से 19 मई को गिरफ्तार किया था। इस पोस्ट को लेकर भोपाल के कई हिंदू संगठनों ने पुलिस में शिकायत की थी। जर्मनी की पुलिस ने पाकिस्तान के 3 लोगों को यौन हमला करने के मामले में गिरफ्तार किया है। ये 3 लोग जर्मनी में शरण लेना चाहते हैं। इन लोगों पर एक संगीत उत्सव में 18 महिलाओं पर यौन हमला करने के आरोप लगे हैं। इन महिलाओं का आरोप है कि उन्हें पुरुषों के समूह ने पहले घेरा और फिर जबरदस्ती छूने की कोशिश की थी। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में पहले 3 महिलाओं ने शिकायत दर्ज की, जिसके बाद पाकिस्तान के इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 15 अन्य महिलाओं ने इनके खिलाफ शिकायत की। उत्तरी अफगानिस्तान में अधिकारियों का कहना है कि तालिबान चरमपंथियों ने 35 लोगों को अगवा कर लिया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है, मैं हूं निखिल रंजन। पिछले 4-5 दिन से दिल्ली में लोगों को गर्मी से राहत मिली हुई थी, लेकिन आज फिर सूरज ने अपना ताव दिखा दिया। हालांकि अब ज़रूर एक बार फिर कुछ बादल दिख रहे हैं, लेकिन देश की राजनीति में पारा चढ़ा हुआ है। सोनिया गांधी के गर्मा गर्म बयानों ने कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ताओं का जोश बढ़ा दिया है। मामला रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा है। कल ही मीडिया में खबर आई कि हथियारों के सौदेबाज से लंदन में घर की खरीदारी के सिलसिले में रॉबर्ट वाड्रा का कुछ लेन देन हुआ है। सोनिया गांधी ने रॉबर्ट वाड्रा का बचाव करने के साथ ही 2 साल पूरे करने पर चल रहे मोदी सरकार के जश्न की भी जमकर आलोचना की। फिर क्या था, चल पड़ा बयानों का सिलसिला। पूरे ब्यौरे के साथ दिल्ली से विनीत खरे।
कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा फिर विवादों में हैं। मीडिया रिपोर्टों में रॉबर्ट वाड्रा पर हथियारों के एक विवादित सौदेबाज से संबंध के आरोप लगाए गए हैं और कहा गया है कि दोनों ने एक दूसरे को ईमेल भेजे। साथ ही रिपोर्टों में लंदन में रॉबर्ट वाड्रा की कथित संपत्ति की भी बात की गई है। रॉबर्ट वाड्रा के वकीलों ने इन रिपोर्टों को गलत बताया है। समाचार चैनल NDTV के मुताबिक कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस के विरोधियों द्वारा रॉबर्ट वाड्रा को सुव्यवस्थित ढंग से निशाना बनाया जा रहा है। उधर सोनिया गांधी रायबरेली में मौजूद थी, जहां उन्होंने एनडीए सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर जश्न मनाने को लेकर सरकार को घेरा।
मैंने कभी ऐसा नहीं देखा, प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री है, शहंशाह नहीं है, देश का प्रधानमंत्री है। देश में जब गरीबी है, सूखा है, किसान परेशान है, तो इस तरह की शो सेटअप करना मुझे लगता मुनासिब नहीं।
सोनिया गांधी ने अपने दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर लगे आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि ये रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ षड्यंत्र है और कांग्रेस मुक्त भारत की मुहिम के तहत इसे रचा गया है।
भाई, ये तो कांग्रेस मुक्त भारत का के षड्यंत्र का एक बार बार रोज रोज नया किसान नया कदम
उठा।
अगर ये भी एक षड्यंत्र है, कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब क्या है? रोज कुछ न कुछ ये लोग बहाना बनाते हैं, गलत इल्जाम लगाते हैं। अगर कुछ ऐसी बात है तो बिना भेदभाव जांच करो, दूध का दूध पानी का पानी।
वाड्रा के वकीलों ने इन आरोपों से इनकार किया है कि वाड्रा के पास लंदन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई संपत्ति है। उधर नरेंद्र मोदी को शहंशाह कहे जाने पर भाजपा के गिरिराज सिंह ने समाचार एजेंसी ANI से कहा,
अब ये बौखलाहट में उन्होंने ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जो उचित नहीं है। प्रधानमंत्री कोई शहंशाह नहीं होता, प्रधानमंत्री एक जनप्रतिनिधि होता है, वो भी प्रधानमंत्री जो चाय बेचने वाले का बेटा हो, वो कभी शहंशाह न था, न है, न रहेगा, क्योंकि वो एक गरीब के कोख से पैदा लिया है, कोई राजा के कोख से पैदा लिया है। कांग्रेस मुक्त भारत की अपील हमने जनता से की है। अगर आसाम में कांग्रेस मुक्त हो गया, अगर तमिलनाडु में हो गया, अगर सभी जगह कांग्रेस मुक्त हो रहे हैं, इसमें BJP को कोसने के बजाय अपने आप को देखें, क्यों कांग्रेस मुक्त हो रहे हैं।
चाहे DLF जमीन विवाद को लेकर आरोप हो, मैंगो पीपल की टिप्पणी हो, या फिर ये कहना कि उन्हें प्रियंका की जरूरत नहीं है, रॉबर्ट वाड्रा हमेशा विवादों में रहे हैं। उधर चुनाव के दौरान रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप लगाने वाली भाजपा की केंद्र सरकार से लोग पूछ रहे हैं कि पिछले 2 साल से सरकार सत्ता में है, इसके बावजूद रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई है। विनीत खरे, BBC दिल्ली।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
BBC हिंदी।
ये BBC रेडियो है और आप सुन रहे हैं दिनभर निखिल रंजन के साथ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज इलाहाबाद में एक रैली को संबोधित किया। रैली से पहले अमित शाह ने वाराणसी में कथित तौर पर दलित के घर पर भोजन किया। हालांकि जिन गिरिजा प्रसाद बिंद के घर पर उन्होंने भोजन किया, वो बिंद समुदाय उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग में आता है। भाजपा के इस कदम की राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा भी है। सुनिए समीर आत्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
दलित के घर भोजन करने पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का भारतीय जनता पार्टी अक्सर मजाक उड़ाया करती थी, लेकिन अब पार्टी ने राहुल गांधी के इस कदम को शायद अपनी रणनीति में शामिल कर लिया है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह इलाहाबाद में रैली से पहले वाराणसी के सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के जोगियापुर गांव में गिरिजा प्रसाद बिंद के घर पर पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ भोजन करने पहुंचे। पार्टी की ओर से इस भोज का जमकर प्रचार भी किया गया था और समरसता भोज का नाम दिया गया था। अमित शाह के साथ पार्टी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह भी इस भोज में शामिल थे।
हम लोग के कार्यकर्ता है, उनके घर पे भोजन था। जरूर है कि कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के भी दलित है, तो भारतीय अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा उन लोगों के बीच में जाके, अच्छा उन्होंने भोजन खिलाया, प्रेम से खिलाया।
लेकिन राजनीतिक हलकों में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि पिछड़े समुदाय को दलित समुदाय के रूप में क्यों प्रचारित किया जा रहा है। सिद्धार्थनाथ सिंह इसकी वजह बताते हैं।
अब ऐसा है कि इसकी एक रिक्वेस्ट है, मगर जो राज्य सरकार है वो इस पे आनाकानी कर रही है, मगर उनको बिन समाज को लेकर आना चाहिए, दलित में उनकी मांग है, वो हम लोग जब हमारी सरकार बनेगी तो हम उसमें जरूर विचार करेंगे।
दरअसल ये सारी कवायद उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हो रही है। पार्टी अति पिछड़ों और दलितों को अपने पाले में करने की रणनीति बना रही है और ये कवायद उसी का हिस्सा है। इससे पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बनारस के संत रविदास मंदिर में रैदासियों के साथ लंगर चख चुके हैं। लेकिन भाजपा की इस कवायद का उसे राजनीतिक लाभ कितना मिल सकेगा, इस बारे में लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्र कहते हैं।
एक्चुअली ऐसा है कि मुलायम सिंह सरकार ने 17 जातियों को ओबीसी को शेड्यूल कास्ट में डालने के लिए सिफारिश केंद्र सरकार को कई बार भेजी, वो पूरी नहीं हुई। अब चूंकि दलित जो ओरिजिनल वोटर है वो मायावती का वोटर है इंटैक्ट, उसमें सेल लगाना संभव नहीं है, तो उन 17 जातियों को दलित बता करके दलितों को कंफ्यूज करने, उनमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का एक तरीका है। ये कोशिश बहुत दिनों से राहुल गांधी ने की, पर दलितों ने राहुल गांधी को वोट नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये कह सकते हैं कि अभी दलितों का, विशेषकर जाटों का और जाटों के समानांतर जो पूरी उत्तर प्रदेश में जाती है, उनका वो भंग मायावती से नहीं हुआ है।
भाजपा अध्यक्ष ने वाराणसी में जहां कथित तौर पर दलितों के साथ भोजन किया, वहीं इलाहाबाद में सरदार पटेल किसान महासम्मेलन में शिरकत की। इस सम्मेलन में दूसरे दलों से आए पटेल समुदाय के कुछ लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक प्रवीण पटेल भी शामिल हैं। बहरहाल, जानकारों का कहना है कि पार्टी कोशिशों में जरूर लगी है, लेकिन बसपा और सपा के रहते इन वर्गों पर कितना प्रभाव जमा पाती है वो देखने वाली बात होगी। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
दलित के घर भोजन करने पहुंचे बीजेपी के नेता। और अब सुनिए खबर कोलकाता से। कोलकाता के साल्टलेक इलाके में रविवार को चलती कार में एक नेपाली युवती के साथ चार लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। पुलिस ने इनमें से तीन लोगों को पकड़ने का दावा किया है और चौथे शख्स की तलाश जारी है। इस बारे में और जानकारी के लिए मैंने थोड़ी देर पहले स्थानीय पत्रकार PM तिवारी से बात की।
ये मामला एक नेपाली मूल की युवती है, ये उत्तर बंगाल से आई थी और यहाँ 3 साल से किराए पर रह रही थी उत्तर 24 परगना जिले में, और ये एक डांस बार में गाना गाती थी। तो रोज की तरह रविवार रात को ये लौट रही थी, वहां से सॉल्ट लेक करीब है तो खाने की तलाश में कोई रेस्टोरेंट तलाश रही थी, तो ये कार से, निजी कार से बुक की थी इसने, वहां पहुंची तो वहां थोड़ा कंफ्यूज हो गई रात के समय कहां जाए, तो किसी से रास्ता पूछा एक युवक से उन्होंने, तो उस युवक ने उसको गलत दिशा में भेज दिया और फिर अपने दोस्तों को बुला लिया गाड़ी में और फिर जबरदस्ती युवती को वहां से उठा लिया और 3.5 घंटे तक घूमते रहे उसी इलाके में और बारी बारी बलात्कार किया इन लोगों ने उसके साथ। तो एक जगह गाड़ी थोड़ी धीमी हुई तो युवती शोर मचाने लगी तो वे घबरा गए और उसको कार से नीचे फेंक दिया और भाग गए वहां। कुछ देर बाद एक टैक्सी चालक को उसके पास पहुंचा और उसने पुलिस को खबर दी, तब पुलिस पहुंची और उसे अस्पताल में दाखिल कराया।
तो अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है?
हाँ, पुलिस को मौके से एक मोबाइल मिली थी, उसी के आधार पर कॉल डिटेल्स निकलवा के और फिर पहले एक युवक को गिरफ्तार किया पुलिस ने और फिर उससे पूछताछ के आधार पर बाकी दो और को गिरफ्तार किया। कुल 3 लोग अरेस्ट हुए हैं आज दोपहर 12:30 के आसपास। वो भी उसी इलाके के रहने वाले हैं, उत्तर 24 परगना के हारवा एक जगह है वहां से। अब चौथे की तलाश है उनको, तो गिरफ्तार युवकों से भी पूछताछ चल रही है और पुलिस का दावा है कि उन लोगों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है, अब चौथे की तलाश चल रही है।
पीड़ित महिला नेपाल से आई है या नेपाली मूल की है?
सिलीगुड़ी इलाका है, उत्तर बंगाल में नेपाल से सटा हुआ, तो रोजगार की तलाश में लोग, नेपाली लोग आके बस गए हैं, तो यहीं की हैं लेकिन नेपाली मूल की।
अभी चौथे शख्स की गिरफ्तारी नहीं हुई है?
जी अभी नहीं, पुलिस का कहना है कि ठोस कुछ उसको खबर मिली है तो जल्दी ही उसे भी पकड़ लिया जाएगा।
कोलकाता से स्थानीय पत्रकार PM तिवारी बता रहे थे कि रविवार को चलती कार में जिस नेपाली युवती के साथ बलात्कार हुआ था उसमें से 3 दोषियों को पकड़ लिया गया है। अब एक वो खबर जो हम सब लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी है। सूचना अधिकार कानून के तहत मांगी गई जानकारी में ये बात सामने आई है कि 2000 से ज़्यादा लोगों में HIV के वायरस ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून चढ़ाए जाने के दौरान पहुँचे। ये आंकड़े अक्टूबर 2014 से लेकर मार्च 2016 के बीच के हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मामले उत्तर प्रदेश से हैं जबकि गुजरात दूसरे नंबर पर है। इन आंकड़ों से ये चिंता उभर रही है क्योंकि बीमार लोगों को खून चढ़ाए जाने की अक्सर ज़रूरत पड़ती है, लोगों से रक्तदान करने के लिए खूब अपील भी की जाती है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थान यानी नाको की अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर शोभिनी राजन से मैंने बात कर पूछा कि इन आंकड़ों का सच क्या है।
ये जो रिपोर्ट है ये बात करती है कि जो लोग HIV टेस्टिंग अपना कराने आते हैं इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स में, जो पॉजिटिव टेस्ट करते हैं उन लोगों से पूछा जाता है कि आपको किस मोड ऑफ ट्रांसमिशन से HIV हुआ हो सकता है, तो उनका जो भी वर्बल सेल्फ डिस्क्लोज्ड रिस्पॉन्स होता है उसके हिसाब से ये डेटा जेनरेट होती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हम ब्लड बैंक से लिंक नहीं कर सकते, ये एचआईवी पॉजिटिव लोगों के ग्रुप में से कितने लोगों ने ये कहा कि हमको एचआईवी किस जरिए से हुआ, ये उसको पर्टेन कर।
इसका ये मतलब तो जरूर है कि एचआईवी से पीड़ित लोग भी किसी न किसी रूप में ब्लड दे रहे हैं लोगों को।
हम एग्जैक्टली इस बात को नहीं मानेंगे टोटली, और ये भी नहीं कहेंगे कि ये सही नहीं है। बेसिकली क्या होता है कि एचआईवी या कोई सा भी इन्फेक्शन आप ले लें, इसका जो ट्रांसमिशन है वो ब्लड के जरिए से हो सकता है। और जो हमारी ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट जो हमारे ब्लड बैंक्स को लाइसेंस करती है, उन्होंने मैंडेटरी किया हुआ है कि 5 इन्फेक्शन के लिए टेस्टिंग जो है वो हर ब्लड बैंक ने करनी ही करनी है। तो इन 5 इन्फेक्शन में एचआईवी आता है, हेपेटाइटिस बी, सी, मलेरिया और सिफिलिस आता है। इसमें जो थोड़ी सी ये टेक्निकलिटी है कि जब कोई अपना टेस्ट कराता है और वो टेस्ट नेगेटिव आता है तो ये रूल आउट 100% इस बात को नहीं करता कि वो इन्फेक्टेड नहीं है, क्योंकि इन सब इन इन्फेक्शंस में एक विंडो पीरियड नाम की चीज़ होती है जो जिस पीरियड में हम टेस्ट से उस इन्फेक्शन को डिटेक्ट नहीं कर सकते।
आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी कि आखिर इतने लोगों को कैसे हुआ होगा ये?
हमारे जो आंकड़े कहते हैं नाको के, वो ये कहते हैं कि लगभग 21 लाख लोग एस्टिमेटेड हैं जिनको इस कंट्री में एचआईवी है। जो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन हैं वो वही 4 हैं। जो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जरिया था, ये शुरू शुरू में जब ब्लड बैंक्स के पास लाइसेंसिंग नहीं थी, उनके ऊपर इतना स्ट्रिंजेंट कंट्रोल नहीं था, तब ब्लड से एचआईवी का होना काफी कॉमन माना जाता था। अब ये जो ट्रांसमिशन है ये काफी अनकॉमन हो चुका है। मतलब इसमें ऐसा कोई हमारी डेटा ऐसा कुछ नहीं कहती कि ये नंबर जो है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से राइज कर रहा है, ये नंबर ओवर द इयर्स घट ही रहा है।
ऐसी स्थिति में जो लोग ब्लड ले रहे होंगे या दे रहे होंगे वो क्या कर सकते हैं अपनी सुरक्षा के?
उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ब्लड जो कोई भी ले वो लाइसेंस युक्त ब्लड बैंक से ले, और ऐसे ही किसी नर्सिंग होम या मतलब लोकल अपने किसी प्रैक्टिशनर वगैरह से ना ले, क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर इस ब्लड को प्रिस्क्राइब करे। और ब्लड के जो है वो इंडिकेशंस बहुत क्लियर हैं। ब्लड ऐसी चीज नहीं है जो हर छोटी छोटी कंडीशन में मतलब यूज होती है, इसके इंडिकेशंस बहुत क्लियर हैं। जैसे कुछ लोगों को रिपीटेड ब्लड की जरूरत होती है, जैसे थैलेसीमिक्स हैं, और कुछ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या कैंसर के लोग होते हैं जिनको ब्लड की जरूरत होती है।
2000 से ज़्यादा लोगों में एचआईवी के वायरस ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून चढ़ाए जाने के दौरान पहुंचे, जानकारी दे रही थी नाको की अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर शोभिनी राजन।
बीबीसी हिंदी सेवा के रेडियो कार्यक्रम आप शॉर्टवेव 16, 19, 25, 31, 41 और 49 मीटर बैंड यानी 7255, 11995, 11700, 7565, 7600 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर सुन सकते हैं। फ्रीक्वेंसीज की विस्तृत जानकारी हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर।
बीबीसी रेडियो पर आप दिन भर सुन रहे हैं निखिल रंजन के साथ, और आइए अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की चर्चा कर लेते हैं। उत्तरी अफगानिस्तान में कुंदुज प्रांत में तालिबान चरमपंथियों ने 35 यात्रियों को अगवा कर लिया है। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि अगवा लोगों में से 13 लोगों की हत्या कर दी गई है, इनमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। कुंदुज के गवर्नर के प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया कि तालिबान चरमपंथियों ने 4 बसों को रोका और करीब 200 से ज्यादा यात्रियों की तलाशी ली गई, उनसे पूछताछ की गई। इनमें से ज्यादातर लोगों को छोड़ दिया गया। सभी यात्री काबुल से बदाखशां जा रहे थे। ब्यौरा बीबीसी संवाददाताओं ने भेजा है, आपको सुना रहे हैं अमर शर्मा।
उत्तरी अफगानिस्तान में यात्रियों से भरी हुई 4 बसें काबुल से बदखशां जा रही थीं। चरमपंथी संगठन तालिबान के हथियारबंद लड़ाकों ने रास्ता बंद कर रखा था और बसों को आगे जाने नहीं दिया। स्थानीय पुलिस के कमांडर शेख अजीज कामावाल ने कहा है कि 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।
वे यात्रियों को उमरखाली गांव ले गए और वहां उनके पहचान पत्रों की जांच की गई, ये देखने के लिए कि इनमें से कोई सैनिक या सरकारी कर्मचारी तो नहीं। उन्होंने 3 लोगों की हत्या कर दी, लेकिन बुजुर्गों और महिलाओं को रिहा कर दिया। बाकी लोगों को वे नाव के जरिए नदी की दूसरी तरफ ले गए। उन्होंने ज्यादातर लोगों को छोड़ दिया है और कुछ लोगों को अपने कब्जे में रखा हुआ है।
समाचार एजेंसी AFP को स्थानीय निवासियों ने बताया कि चरमपंथियों ने यात्रियों को एक स्थानीय मस्जिद में छिपा रखा है, जहां वे उनके कागजातों की जांच कर रहे हैं और पूछताछ कर ये जानने की कोशिश में लगे हुए हैं कि कहीं उनका सरकार से कोई संबंध तो नहीं। अफगानिस्तान के अस्थिर क्षेत्रों में तालिबान और अन्य सशस्त्र गुट हाईवे से होकर गुजरने वाले यात्रियों को आए दिन अगवा कर लेते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। हाल के दिनों में कुंदूज इलाके में सुरक्षा व्यवस्था खराब हो गई है। पिछले 14 सालों में कुंदूज पहला शहरी इलाका है जो पिछले साल सितंबर के महीने में तालिबान के कब्जे में चला गया। अफगान सरकार को इससे बड़ा झटका लगा था। कुंदूज के कई क्षेत्रों में चरमपंथी संगठन तालिबान सक्रिय है और इस क्षेत्र में हाल के महीनों में हिंसा बढ़ गई है। कई दिनों तक चली लड़ाई के बाद अफगान सुरक्षा बल कुंदूज के कई महत्वपूर्ण इलाकों को अपने नियंत्रण में वापस ले पाए थे। पिछले हफ्ते ही मुल्ला मंसूर की मौत के बाद अफगान तालिबान ने ऐलान किया कि मावलावी हैबतुल्ला अखुंदजादा को अफगान तालिबान का नया नेता बनाया गया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मुल्ला मंसूर ड्रोन हमले में मारे गए थे।
अफगानिस्तान की ये रिपोर्ट सुना रहे थे अमर शर्मा। और अब वो खबर जिसे सुनकर आपके होंठों पर भी शायद मुस्कान आए। आपको सलमा अगर याद है, फिल्म निकाह में उनके अभिनय ने बहुत से लोगों के दिल पे उनके लिए अमिट जगह बना दी। अब उन्हें भारत की नागरिकता भी मिल गई है। ये खबर मिलते ही हमारे सहयोगी विनीत उनसे बात करने पहुंचे। आइए सुने क्या कहती हैं वो।
हमारी नेशनैलिटी पेपर्स जो हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। आई वाज ब्रिटिश नेशनल, आई एम स्टिल अ ब्रिटिश नेशनल, आई हैव मेंटेन दैट पासपोर्ट एज वेल।
जी,
और दूसरे जो हमारे हैं वो सारे थ्रू हो गए पेपर्स।
जी जी जी, तो मतलब OCI कार्ड अब आपके हाथ में है।
जी हाँ।
अच्छा, तो ये कब हुआ? क्योंकि कल से हम सुन रहे थे कि जो हिंदुस्तान के गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, वो उनसे मुलाकात होनी है आपकी।
नहीं नहीं, हम तो उनको कितना देर से जानते हैं।
अच्छा,
कितनी दफा मिले हैं। आपको पता है प्रेस कैसे उठाता है चीज को, और दिस वाज डन सम टाइम बैक।
अच्छा, ये आज और कल की बात नहीं है, आपको पहले ही मिल चुका था OCI कार्ड।
जी हाँ जी हाँ,
ये कब की बात है ना?
पहले कभी हुआ है। अच्छा। तो मगर आपको न्यूज मिल गई ना, अब इसकी इतनी डिटेल आप हमारे से क्यों?
अच्छा नहीं, बस हमें ब्रॉडली का आईडी कब तक मिला है थोड़ा सा बता दें।
मिल चुका है।
अच्छा, नहीं, कब मिला ये? महीना हफ्ते पहले कब मिला
ये? हमें कुछ देर पहले मिला है।
आज ही कुछ देर पहले?
हाँ जी, कुछ देर पहले।
ठीक है मैम, एक जो हमारे बहुत सारे जो श्रोता है सामाइन है वो जानना चाह रहे थे कि आपको OCI कार्ड की जरूरत क्यों पड़ी।
ये देखिए, किसी पर्पस से निकाला होगा ना गवर्नमेंट ने OCI कार्ड जो है वो इतनी देर से निकाला हुआ है। उससे ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एन इंडियन, आई नीड एन इंडियन आईडी, एंड दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। एंड आई डिड नॉट वांट टू लूज माय ब्रिटिश पासपोर्ट एट द सेम टाइम, दिस इज माय कंट्री एंड आई वांटेड टू मेंटेन माय ओन आइडेंटिटी बीइंग एन इंडियन।
सलमा आगा को भारत सरकार ने OCI कार्ड दिया है, मतलब ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ये वो लोग हैं जो रहते तो विदेश में हैं लेकिन नागरिकता उनके पास भारत की है। आपको बता दें कि सलमा आगा लंदन में रहती हैं। और अब हमारी खास सीरीज। महाराष्ट्र का लातूर सूखे का सामना कर रहा है और इस आपदा से जूझने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। कभी तपती गर्मी में मीलों दूर जाना होता है तो कभी गहरे कुएं में उतर कर पानी ऊपर लाना होता है। पानी भरने की कोशिश में कुछ बच्चों ने तो अपनी जान भी गंवा दी है। सुनिए सूखे पर चल रही हमारी खास सीरीज में दूसरी कहानी, जिसे तैयार किया है संजय तिवारी ने।
महाराष्ट्र में लातूर के पास बीड जिले में रहने वाले चंदू को भी अब पानी लाने के लिए कुएं पर जाने में डर लगता है। वीड़ा गांव के 14 साल के चंदू को कुआं देखकर छोटे भाई की याद आने लगती है, जो इसी साल 21 अप्रैल को कुएं में डूबकर मर गया। उसकी उम्र महज 10 साल की थी और उस दिन भी दोनों भाई साथ साथ पानी लेने कुएं पर गए थे।
नौ पानी आने गल तो पानी काट देता था, बकेट में पानी भरून तो पानी सान रहा था, पानी सटला।
ये कह रहा है कि हम दोनों भाई भाई सुबह 9 बजे पानी लाने बाड़े पे गए थे। पानी लाते समय पानी रस्सी से खींचता था, खींचते समय उसके भाई जो है छोटा, उसका सचिन का पैर फिसल गया, फिसल के वो पानी में डूब गया। तो उसने नीचे से बोला था कि भाई मुझे बचा बचा, लेकिन वो उसी तीर नहीं आया। तो उसने पड़ोस के जो लोग हैं उनको बोला नहीं, लेकिन वो नहीं आया, उनको झूठा लगा। तो यहाँ गांव में आया, गांव में आके उसे उस मामा को लेके गया। फिर मामा वहाँ गया, जब तक वो उसकी बॉडी निकली तब तक उसकी बच्चे की जान गई थी।
इस हादसे ने चंदू पर गहरा असर किया है। वो कुएं पर नहीं जाना चाहता लेकिन मजबूरी खींच लाती है। फर्क ये आया है कि उसकी माँ उसे अकेले नहीं जाने देती।
वो कह रही कि उसका गांव जो है वो मुर्शिदपुर है, बीड जिले में, उधर बीड़ तालुका में आता है। तो वहाँ खेती बीती थी, उसके सब जो पति है उसने बेच दी, तो खाने के प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से ये यहाँ आए, उसके भाई के पास रहते। तो फिर वो भंगार चुन के अपने बच्चों के साथ उधर निवा करती है उनका। अभी भी मैं पानी को जाती हूँ बच्चों के साथ, लेकिन वो बच्चे अभी भी डरते हैं। रात को जो सपने में भी डरते हैं, वो सपना गिरा तो सपने में डरते हैं बच्चे।
सूखा और पानी की किल्लत से उपजी मजबूरी देखिए कि अब भी गांव के बच्चों को उसी कुएं पर जाना पड़ता है। इनमें 13 वर्षीय शुभम और उसके जैसे कई बच्चे शामिल हैं।
मेरा नाम शुभम कसपटवड़े, मैं सातवीं में पढ़ता हूँ और मेरी उम्र 13 साल है। मेरे को पानी भरने के लिए जाना पड़ता है। वो सचिन की मौत हुई थी, उस कुएं में जाना पड़ता है। डर लगता है, फिर भी हमको जरूरत है, इसलिए हमको जाना पड़ता है। मेरे साथ 100 से भी ज्यादा बच्चे का ये काम करना पड़ता है पानी लाने के लिए।
अभी टैंकर भी आता है ना बीच बीच में?
10 दिन बाद आता है, कब 8 दिन बाद आता है, इसलिए हमको पानी नहीं मिलता हर दिन।
ये कहानी सिर्फ बीड जिले की ही नहीं है, मराठवाड़ा में चंदू जैसे न जाने कितने बच्चे हैं जो पानी भरने के लिए कुएं में रोजाना उतरते हैं। लातूर के पास औसा किले के पास बने पुराने कुएं से पानी भरने वालों में एक छोटी बच्ची भी शामिल है। इसका नाम है शेख निहार यार। छठी क्लास की ये बच्ची 60 फीट गहरे कुएं में रोजाना उतर कर पानी भरती है। आप हर दिन आते हैं यहाँ पे पानी भरने?
हाँ।
और ऐसे ही नीचे उतर कर पानी भरते आपको डर नहीं लगता?
लगता है।
डर लगता है?
हाँ।
तो फिर क्यों आते हैं?
अम्मी के साथ।
पानी भरने के लिए कुएं में उतरना ही काफी नहीं है, कई बार इसके लिए लंबी दूरी भी तय करनी होती है। ग्राम सारोला से उस्मानाबाद जाती हाईवे पर दो भाई बहन भरी धूप में साइकिल से चले जा रहे हैं, साथ में प्लास्टिक के खाली हंडे टंगे हैं।
आपका नाम क्या है?
हमारा नाम अभिजीत जोम्बड़े।
अभिजीत जोम्बड़े, आपकी उम्र क्या होगी, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं?
हमारी उम्र है 13 साल, हम 8वीं क्लास में पढ़ते हैं।
बेटा आपका नाम क्या है, उम्र क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो?
अंजलि संतोष जोम्बड़े, 6वीं कुल में पढ़ते हैं, उम्र 12।
अच्छा, और ये पानी लाने आप कहाँ जा रहे हैं?
उधर।
उधर किधर?
इधर से पानी आने जा रहे हैं।
हाईवे की भारी यातायात का डर लगना लाजमी है, लेकिन पानी भरना बेहद जरूरी है। हमें कई बच्चे ऐसे भी मिले जो कहीं किसी रेस्तरां पर, किसी मालवाहक ट्रक या किसी दुकान में काम कर रहे हैं ताकि घर में कुछ रुपए आ सके। समूचा मराठवाड़ा अब तक के सबसे बड़े सूखे से परेशान है। इंसानों के साथ साथ पशुओं और फसलों की भी बेहद बुरी दशा है। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी इस संकट से जूझ रहे हैं, दो हाथ कर रहे हैं। बीड जिले से संजय रमाकांत तिवारी, बीबीसी हिंदी के लिए।
और आइए अब खेलों की चर्चा कर लेते हैं। आदेश कुमार गुप्त स्टूडियो में आ चुके हैं। आदेश जी, क्या चल रहा है खेलों में आज?
जी निखिल, इंडोनेशियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में 8वीं वरीयता के साथ खेल रही भारत की साइना नेहवाल ने आज पहले दौर में जीत के साथ शुरुआत की। साइना नेहवाल ने हालांकि जीत के लिए पसीना बहाया और कड़े संघर्ष के बाद चीन ताइपे की पाई यू पो को 21-11, 19-21, 21-15 से हराया। ये मुकाबला 1 घंटे 3 मिनट तक चला, लेकिन मिश्रित युगल वर्ग में भारत के मनु अत्री और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी पहले ही दौर में सिंगापुर के योंग काइतेरी ही और वेई हान तान के हाथों 21-14, 27-25 से हारकर बाहर हो गई। कल पुरुष एकल वर्ग में भारत के समीर वर्मा दूसरी वरीयता हासिल मलेशिया के ली चोंग वेई का सामना करेंगे, कठिन मुकाबला। उधर अगर श्रीलंका के खिलाफ हुई मौजूदा टेस्ट सीरीज की बात की जाए तो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में गेंदबाजों की सूची में पहला स्थान हासिल कर लिया है। उल्लेखनीय है कि जेम्स एंडरसन ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 36 रन देकर 3 और दूसरी पारी में 58 रन देकर 5 विकेट हासिल किए थे। उधर फ्रेंच ओपन में देखना है कि मुकाबले किस तरह से चलते हैं। कल का दिन तो बारिश में धुल गया था, लेकिन रोमानिया की सिमोना हालिप चौथे दौर में ऑस्ट्रेलिया की समांथा स्टुरसू से 7-6, 6-3 से हारकर बाहर हो गई हैं।
बहुत शुक्रिया आदेश जी खेल समाचारों के लिए। और अब कार्यक्रम जब खत्म होने वाला है तो प्रमुख समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रायबरेली में एनडीए सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर जश्न मनाने को लेकर सरकार को घेरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शहंशाह कहकर तंज कसा है। तुर्की ने रूस पर सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले शहर इदलीब पर हमला करने का आरोप लगाया है। तुर्की का आरोप है कि रूस ने अस्पताल और मस्जिद पर हमला किया जिसमें 60 आम नागरिक मारे गए हैं और करीब 200 लोग घायल हुए हैं। इराक के फलुजा में प्रवेश करने की कोशिश कर रही सेना का कहना है कि उसने इस्लामिक स्टेट के साथ 4 घंटे तक जवाबी कार्रवाई की और उन्हें रोका। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुनाया सुशीला सिंह ने और आज स्टूडियो संभाल रहे हैं तिलक भाटिया। 1.5 घंटे बाद घटनाचक्र में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक खबरों के लिए देखते रहिए bbchindi.com। निखिल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।